एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत तकनीकी लगता है, पर असल में जिसका असर हम सबकी सोच पर, हमारे काम करने के तरीके पर पड़ सकता है। शब्द है कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग।
नमस्कार, और इस काफी इंटरेस्टिंग विषय को समझने के लिए हम पीटर जे डिनिंग और मैटी टेड्रे की किताब कंप्यूटेशनल थिंकिंग का सहारा ले रहे हैं।
हाँ,
और पहली बात तो ये साफ कर दें कि ये सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कोडिंग की बात नहीं है, जैसा कि मतलब
हाँ
अक्सर लोग समझ लेते हैं।
हाँ ये बहुत कॉमन गलतफहमी है।
बिल्कुल, ये असल में सोचने का एक तरीका है, यू नो, प्रॉब्लम्स को देखने का एक नजरिया।
और ये आज इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम सब, चाहे वो काम पर हो, घर पर या समाज में, हम लगातार कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ना।
सही बात है।
तो ये किताब दावा करती है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग या सीटी हमें इन चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने में मदद कर सकती है। और सबसे मजेदार बात, ये सोच कंप्यूटर के आने से भी बहुत पहले से मौजूद है।
ये कोई नई इजाद नहीं है, ये एक पुराना मानवीय कौशल है जिसे बस नया नाम और एक नई पहचान मिल गई है, कह सकते हैं।
चलिए देखते हैं कि लेखक इस विषय को खोलते कैसे हैं।
पहले लेखकों की बात करते हैं। पीटर जे डनिंग, ये कंप्यूटर साइंस की दुनिया में मतलब एक बहुत बड़ा नाम है।
जी,
ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटिंग के जो फंडामेंटल सिद्धांत हैं, उन पर इनका काफी काम है। और ये ACM यानी एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं,
अच्छा,
जो कि इस फील्ड की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है।
बिल्कुल, तो उनका अनुभव तो मतलब विषय की गहराई से आता है।
और उनके साथ हैं मैटी टेड्रे, ये फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड में प्रोफेसर हैं, कंप्यूटर साइंस के ही। हाँ, पर वो सिर्फ प्रोफेसर नहीं हैं, वो इस विषय के इतिहासकार और दार्शनिक भी हैं।
अच्छा,
उनका फोकस इस बात पर रहा है कि कंप्यूटिंग से जुड़े आइडियाज कैसे डेवलप हुए और अलग अलग कल्चर्स में, खासकर एजुकेशन में, इन्हें कैसे देखा जाता है, कैसे अपनाया जाता है।
अरे वाह, तो ये जोड़ी तो कमाल किया है। मतलब एक तरफ विषय के अंदर का गहरा ज्ञान
डिनिंग,
और दूसरी तरफ उसे बाहर से देखने वाला नजरिया, हिस्टोरिकल ग्लोबल पर्सपेक्टिव।
बिल्कुल, ये दोनों मिलकर हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि सीरी क्या है, बल्कि ये भी कि इसका इतिहास क्या है, ये क्यों जरूरी है, और इसे लेकर जो आम गलतफहमियां हैं वो क्या हैं।
सही कहा, किताब का मेन मकसद ही यही लगता है कि सीटी के आसपास जो इतना कंफ्यूजन फैला है
हाँ, बहुत है।
उसे दूर किया जाए। लेखक बहुत साफ कहते हैं कि ये सिर्फ कोडिंग सिखाना नहीं है, जैसा आजकल स्कूलों में मान लिया जाता है।
हाँ, ये पॉइंट वो बार बार उठाते हैं। किताब तर्क देती है कि सीटी असल में क्या है, समस्याओं को इस तरह से देखने का, फॉर्म्यूलेट करने का और उनके सॉल्यूशंस को डिजाइन करने का तरीका है कि उन्हें एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के जरिए हल किया जा सके,
और वो प्रोसेस को इंसान भी फॉलो कर सकता है।
या कोई मशीन भी। ये सिर्फ कंप्यूटर्स के लिए नहीं है।
किताब हमें इसके इतिहास की यात्रा पर भी ले जाती है ना? ये दिखाती है कि कैसे इसके बीज पुराने ग्रीक मैथ्स में, जैसे यूक्लिड का एल्गोरिदम,
हाँ, या मध्यकालीन अरब विद्वान जैसे अल-ख्वारिज्मी, जिनके नाम से ही एल्गोरिदम शब्द आया है।
अच्छा, ये तो कंप्यूटर के आने से सदियों पहले की बात हो गई।
बिल्कुल, फिर किताब बताती है कि कैसे कंप्यूटर साइंस के डेवलपमेंट के साथ ये सोच और ज्यादा सिस्टमैटिक हुई। और सबसे जरूरी बात, ये सीटी के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं,
हाँ, वो चार पिलर्स,
डीकम्पोजिशन, पैटर्न रिकग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन और एल्गोरिदम डिजाइन, इनको बड़े सरल उदाहरणों से समझाती है।
इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि हमें इस पावरफुल सोच को अपनाने के लिए, यू नो, मोटिवेट करना है।
तो चलिए इन एलिमेंट्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहला है डीकम्पोजिशन।
डीकम्पोजिशन मतलब किसी बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम को या सिस्टम को छोटे, ज्यादा मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना।
हाँ, जैसे जैसे मान लीजिए किसी को एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो वो उस बड़े काम को छोटे छोटे टास्क में बांट सकता है। वेन्यू बुक करना, गेस्ट लिस्ट बनाना, केटरिंग का इंतजाम करना, डेकोरेशन देखना, वगैरह वगैरह।
हाँ, हर हिस्सा अपने आप में एक छोटी प्रॉब्लम बन जाता है जिसे सॉल्व करना आसान लगता है।
बिल्कुल, और ये तरीका सॉफ्टवेयर बनाने से लेकर साइंटिफिक रिसर्च तक हर जगह काम आता है। घर में सफाई करनी हो तो भी हम कमरों में या कामों में बांट लेते हैं ना।
हाँ बिल्कुल, झाड़ू पोछा डस्टिंग, ये सब डिकम्पोजिशन ही हुआ एक तरह से।
ये कॉम्प्लेक्सिटी को काबू में लाने का पहला स्टेप है।
सही कहा। अगला एलिमेंट है पैटर्न रिकग्निशन। पैटर्न रिकग्निशन यानी चीज़ों में, डेटा में, सिचुएशंस में समानताएं, ट्रेंड्स या जो चीज़ें बार बार हो रही हैं उनको पहचानना।
ये तो हम इंसान शायद बिना सोचे समझे भी काफ़ी अच्छे से करते हैं।
हाँ, कैसे?
जैसे डॉक्टर, वो मरीज के लक्षणों में पैटर्न देखकर बीमारी पहचानते हैं। या मौसम विभाग, पिछले सालों के डेटा में पैटर्न देखकर मौसम का अंदाज़ा लगाता है।
हाँ, या जैसे हम ट्रैफिक में पैटर्न पहचानते हैं कि भाई इस टाइम पे यहाँ जैम मिलेगा ही मिलेगा।
बिल्कुल। या किसी दोस्त के व्यवहार में पैटर्न देखकर समझ जाते हैं कि कब वो खुश है या परेशान।
हाँ,
ये पैटर्न पहचानना हमें चीज़ों को समझने, क्लासिफाई करने और आगे क्या हो सकता है इसका अंदाज़ा लगाने में मदद करता है।
अब आते हैं एब्स्ट्रैक्शन पर।
हाँ,
ये थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। लेखक इसे सीटी का मास्टर स्किल कहते हैं।
हाँ, मास्टर स्किल। और इसका मतलब है जो ज़रूरी जानकारी है उस पर ध्यान देना और जो गैर ज़रूरी डिटेल्स हैं उन्हें नज़रअंदाज करना।
ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका उदाहरण बहुत सिंपल है, जैसे शहर का नक्शा।
हाँ बिल्कुल।
एक अच्छा नक्शा हर गली, हर दुकान, हर पेड़ नहीं दिखाता। वो सिर्फ मेन सड़कें, लैंडमार्क और रास्ते दिखाता है जो आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए ज़रूरी हैं। उसने बाकी सारी जानकारी को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब हटा दिया।
सही। या जब हम कोई कॉम्प्लेक्स मशीन चलाते हैं जैसे कार, हमें यह जानने की जरूरत नहीं होती कि इंजन के अंदर हर पुर्जा कैसे काम कर रहा है।
नहीं, बिल्कुल नहीं
हमें बस स्टीयरिंग व्हील, गियर, ब्रेक, मतलब जो जरूरी कंट्रोल्स हैं
जी,
जो कि एब्स्ट्रैक्शन है, उन
जी
पर ध्यान देना होता है। ये हमें मुश्किल चीज़ों को इस्तेमाल करने और समझने लायक बनाता है। हम प्रॉब्लम का एक सिंपल मॉडल बना लेते हैं।
समझ गई। और चौथा पिलर है एल्गोरिदम डिजाइन।
एल्गोरिदम डिजाइन, इसका मतलब है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या किसी काम को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस का एक क्लियर सेट बनाना।
और फिर से, ये सिर्फ कंप्यूटर कोड लिखना नहीं है, है ना?
बिल्कुल नहीं।
खाना बनाने की कोई रेसिपी,
हाँ,
वो एक एल्गोरिदम है।
एग्जैक्टली।
या कोई फर्नीचर असेंबल करने का इंस्ट्रक्शन मैनुअल, वो भी एक एल्गोरिदम है। यहाँ तक कि सुबह उठकर तैयार होने का हमारा जो रूटीन है, वो भी एक तरह का एल्गोरिदम ही है।
हाँ यार, सही कहा। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बनाने के बारे में है जिसका पालन करके कोई भी इंसान हो या मशीन उस काम को कर सके।
जैसे कस्टमर केयर वाले का तरीका होता है ना,
हाँ
पहले ये पूछें, फिर ये चेक करें।
हाँ वो ट्रबल शूटिंग फ्लो चार्ट्स, वो सब एल्गोरिथमिक थिंकिंग है।
तो यहीं पर वो ज़रूरी फ़र्क आता है जिस पर लेखक बहुत जोर देते हैं। सीटी और कोडिंग एक चीज़ नहीं है।
बिल्कुल, ये समझना बहुत ज़रूरी है, खासकर आजकल जब हर तरफ कोडिंग सिखाने की बात होती है।
उन्होंने इसे समझाने के लिए म्यूज़िक का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। सीटी जो है वो म्यूज़िक कंपोज करने जैसा है, मतलब धुन सोचना, ताल बनाना, स्ट्रक्चर तैयार करना, जबकि कोडिंग उस कंपोज की हुई धुन को किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पर बजाने जैसा है, मतलब उसे किसी खास तरीके, किसी प्रोग्रामिंग भाषा में एक्सप्रेस करना।
बहुत बढ़िया एनालॉजी है। मतलब सीटी वो सोच है जिससे सॉल्यूशन का डिज़ाइन या ब्लूप्रिंट बनता है। कोडिंग उस ब्लूप्रिंट को कंप्यूटर की भाषा में लिखने का एक तरीका है।
हाँ, आप बेहतरीन सीटी का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, भले ही आपको कोडिंग ना आती हो।
और बहुत से लोग करते भी हैं, इंजीनियर्स, मैनेजर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, सब।
तो इस सब चर्चा से इस किताब के कुछ बड़े आइडियाज या कहें कि की मैसेजेस निकल कर आते हैं। पहला तो वही जो हमने शुरू में कहा, सीटी एक फंडामेंटल ह्यूमन स्किल है। ये कंप्यूटर की देन नहीं, इंसानी तर्क का हिस्सा है।
हाँ, जैसे टेक्नोलॉजी ने बस एम्पलीफाई कर दिया है।
दूसरा, इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। यूक्लिड, अल ख्वारिज्मी, ये जानकर हैरानी होती है कि जिसे हम कंप्यूटर वाली सोच समझते हैं वो सदियों पुरानी है। बिल्कुल। तीसरा, एब्स्ट्रैक्शन, ये कॉम्प्लेक्सिटी से डील करने की चाबी है। गैर जरूरी चीजों को हटाकर एसेंस पर फोकस करने की कला। हम शायद रोजमर्रा भी करते हैं ये, जब किसी मुश्किल बात को आसान करके समझाते हैं।
सही। चौथा जो हमने अभी डिस्कस किया, सीटी सिर्फ कोडिंग नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा ब्रॉड है। कोडिंग एक टूल हो सकता है, पर सीटी एक माइंडसेट है।
ये जानना उन लोगों के लिए राहत की बात हो सकती है जो कोडिंग से घबराते हैं। और पांचवा, लेखक कहते हैं कि सीटी साइंस का तीसरा पिलर बन रहा है। ट्रेडिशनल साइंस में थ्योरी और एक्सपेरिमेंटेशन थे। अब कंप्यूटेशनल मॉडलिंग और सिमुलेशन, ये नॉलेज हासिल करने का एक तीसरा पावरफुल तरीका बन गया है, खासकर उन चीज़ों के लिए जिनका लैब में एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल है, जैसे क्लाइमेट चेंज या यूनिवर्स का इवोल्यूशन।
तो ये सब बातें हमारे लिए क्यों मायने रखती हैं?
देखिए, आज की दुनिया सचमुच बहुत कॉम्प्लेक्स है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
हाँ, ऐसे में चीजों को सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन करने की एबिलिटी, उनमें पैटर्न देखने की, जरूरी बातों पर फोकस करने की और सोल्यूशन के लिए स्टेप बाई स्टेप प्लान बनाने की क्षमता, यानी CT, ये हमें बेहतर सोचने, बेहतर डिसीजन लेने और शायद थोड़ी कम घबराहट महसूस करने में मदद कर सकती है।
अब अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसके इस्तेमाल को देखें तो ये हर जगह है। जैसे घर में कोई बड़ा फंक्शन है, बहुत सारे काम है, हम क्या करते हैं? लिस्ट बनाते हैं।
हाँ, कामों की लिस्ट, डिकम्पोजिशन, सोचते हैं कौन सा पहले कौन सा बाद में, एल्गोरिदम, शायद पिछले साल के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन।
या मान लीजिए घर का वाईफाई बंद हो गया, हम सीधे कस्टमर केयर को फोन नहीं करते ना, पहले खुद ही चेक करते हैं।
हाँ, एक सीक्वेंस में, राउटर ऑन ऑफ किया, लाइटें जल रही हैं, तार ठीक हैं, सिर्फ फोन पर नहीं चल रहा या लैपटॉप पर भी। ये एक तरह की डीबगिंग है, एल्गोरिथमिक थिंकिंग है ये।
अंदाजे लगाने के बजाय सिस्टमैटिकली प्रॉब्लम ढूंढना।
और प्रोफेशनल लाइफ में तो ये और भी क्लियर है। डॉक्टर डायग्नोसिस के लिए लक्षणों पैटर्न को देखते हैं, ट्रीटमेंट के लिए एक प्रोसेस एल्गोरिथम फॉलो करते हैं।
मैनेजर किसी प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए उसे एनालाइज करता है, डीकम्पोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन।
जर्नलिस्ट बड़े डेटा सेट्स में से स्टोरीज या पैटर्न ढूंढते हैं।
इंजीनियर कोई पुल या बिल्डिंग बनाने से पहले उसका मॉडल बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिजाइन करते हैं, डीकम्पोजिशन। लॉयर किसी केस को लीगल पॉइंट्स में तोड़ते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट को एक सीक्वेंस में बिल्ड करते हैं, एल्गोरिदम।
ये सब लोग, चाहे वो खुद को CT एक्सपर्ट कहें या ना कहें, असल में इसी सोच का इस्तेमाल कर रहे हैं।
और बड़े स्केल पर सोचें तो शहर में ट्रैफिक प्रॉब्लम को समझना, उसके लिए डेटा एनालाइज करना, पैटर्न, सिमुलेशन चलाना, एल्गोरिदम, एब्स्ट्रैक्शन।
हाँ, या सरकार की कोई नई स्कीम को लागू करना, उसे अलग अलग फेज और डिपार्टमेंट्स में बांटना, डीकम्पोजिशन। ये सब CT के ही एप्लीकेशन है।
इसे समझने और मैनेज करने का एक फ्रेमवर्क देता है।
बिल्कुल।
मेरे लिए इस किताब और हमारी इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी टेक अवे है वो ये कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग ये कोई डरावनी या सिर्फ कंप्यूटर गीक्स की चीज नहीं है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक बहुत ही नेचुरल, लॉजिकल और पावरफुल ह्यूमन तरीका है। और ये जानकर अच्छा लगता है कि ये क्षमता हम सब में है, बस उसे पहचानने और थोड़ा निखारने की जरूरत है।
मैं सहमत हूँ। और मेरे लिए एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ कुछ टेक्निक्स का सेट नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है, एक नजरिया है। दुनिया को सिस्टम्स, प्रोसेस, इन्फॉर्मेशन और उनके इंटरकनेक्शंस के रूप में देखने का नजरिया।
ये हमें आज की जो इन्फॉर्मेशन रिच और इंटरकनेक्टेड दुनिया है उसे बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। मतलब उलझन में थोड़ी क्लैरिटी लाने जैसा है। एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए, लेखक भी इस पर बात करते हैं। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI और मशीन लर्निंग खुद ब खुद सोल्यूशन ढूंढने में बेहतर हो रहे हैं,
हाँ,
तो क्या ऐसा होगा कि फ्यूचर में इंसान का सबसे जरूरी काम सोल्यूशन खोजना नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स को सही ढंग से डिफाइन करना और सही सवाल पूछना बन जाएगा?
अच्छा पॉइंट है।
मतलब क्या CT का वो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन वाला हिस्सा AI के आंसर देने वाले हिस्से से ज्यादा कीमती हो जाएगा?
ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद भविष्य में हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम को सही ढंग से फ्रेम करने की क्षमता, यही हमें मशीनों से अलग और जरूरी बनाए रखेगी।
क्या कहते हैं?
बिल्कुल, एक गहरा विचार है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।